एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
Good time. चल प्रभु, राहों पर अपनी चला। राहे वो जैसे भी हो, रहेगी ये गीत सदा। ये जीवन तू ले चल प्रभु, राहों पर अपनी चला।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तो आशीषित कर जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। पिता परमेश्वर हमारे मनों को हृदयों को खोल दे। विशेषकर मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे तेरे वचन को सुने और समझे और तेरे राह में चलने सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है कहना और करना भाग एक। हम एक दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 21 में पाते हैं और हम उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। मत्ती 21 का 23 से 32 में, किसी मनुष्य के दो बेटे थे और वह पहले के पास गया और कहा, बेटा आज मेरे दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में वह पछताया और चला गया। फिर वह दूसरे के पास आया और उसे भी वैसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं जाता हूँ श्रीमान, परंतु नहीं गया। यीशु ने उन लोगों से पूछा, उन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? यीशु ने अपने श्रोताओं से पूछा, जिसमें धार्मिक अगुवे भी थे, उन्होंने उससे कहा, यीशु मसीह से जवाब दिया कि पहला ने। पहाड़ी उपदेश में मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हम पढ़ते हैं इसे मत्ती 7 का 21 में। ईमानदारी की परीक्षा शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। मसीह किसी से यह नहीं कहते, तुम दूसरों से अधिक क्या कहते हो, बल्कि तुम दूसरों से अधिक क्या करते हो। मत्ती 5 का 47। उनके शब्द अर्थपूर्ण हैं, यदि तुम ये बातें जानते हो तो धन्य हो यदि तुम उन पर चलो, यूहन्ना 13 का 17 कहता है। यीशु मसीह का वचन है। शब्दों का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि उनके साथ उचित कर्म ना हो। दो बेटों के दृष्टांत में यही शिक्षा दी गई है। यह दृष्टांत यीशु की यरूशलेम की अंतिम यात्रा के समय कहा गया था। अपनी मृत्यु से पहले उसने मंदिर से खरीदारों और विक्रेताओं को बाहर निकाल दिया था। उसकी आवाज ने परमेश्वर की शक्ति के साथ उनके दिलों से बात की थी। आश्चर्यचकित और भयभीत उन्होंने बिना किसी बहाने या प्रतिरोध के उसकी आज्ञा का पालन किया था। जब उनका भय कम हो गया तो पुजारी और बुजुर्ग मंदिर में वापस लौटे। उन्होंने देखा कि मसीह बीमारों और मरते हुए लोगों को ठीक कर रहे थे। उन्होंने खुशी की आवाज और प्रशंसा के गीत सुने थे। मंदिर में ही स्वस्थ हो चुके बच्चे ताड़ की डालियां लहरा रहे थे और दाऊद के बेटे के लिए होसन्ना गा रहे थे। बच्चों की आवाजें शक्तिशाली चंगाई करने वाले की प्रशंसा कर रही थी। फिर भी पुजारी और बुजुर्ग अपने पूर्वाग्रह और ईर्ष्या को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अगले दिन जब मसीह मंदिर में उपदेश दे रहा था तो महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उनके पास आकर पूछा, तो ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है? पुजारियों और बुजुर्गों के पास मसीह की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण था। मंदिर की सफाई में उन्होंने स्वर के अधिकार को उसके चेहरे से चमकते हुए देखा था। वे उस शक्ति का विरोध नहीं कर सकते थे जिसके द्वारा वह बोलता था। फिर से अपने उपचार के अद्भुत कार्यों में उसने उनके प्रश्न का उत्तर दिया था। उसने अपने अधिकार का प्रमाण दिया था जिसका खंडन नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह वह प्रमाण नहीं था जिसकी आवश्यकता थी। पुजारी और बुजुर्ग यीशु को मसीहा घोषित करने के लिए उत्सुक थे ताकि वे उसके शब्दों का गलत अर्थ लगा सके और लोगों को उसके खिलाफ भड़का सके। वे उसके प्रभाव को नष्ट करना चाहते थे और उसे मार डालना चाहते थे। यीशु जानते थे कि अगर वे उसमें परमेश्वर को नहीं पहचान सकते या उसके कामों में उसके दिव्य चरित्र का सबूत नहीं देख सकते तो वे उसकी अपनी गवाही पर भी विश्वास नहीं करेंगे कि वह मसीह है। अपने उत्तर में वह उस मुद्दे से बचता है जिसे वे लाना चाहते हैं और निंदा को उनके खुद पर डाल देता है। उसने कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग से या मनुष्यों की ओर से? पुजारी और शासक हैरान थे। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? परंतु यदि हम कहें मनुष्यों से तो हम लोगों से डरते हैं, क्योंकि सब लोग यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। और उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं बता सकते। और उसने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं किस अधिकार से ये काम करता हूँ। हम नहीं बता सकते, उन्होंने कहा, यह उत्तर झूठ था। लेकिन पुजारियों ने अपनी स्थिति देखी और खुद को छिपाने के लिए झूठ बोला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस व्यक्ति की गवाही देने आया था जिसके अधिकार पर वे अब सवाल उठा रहे थे। उसने उसे इंगित करते हुए कहा था, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यूहन्ना 1:29। उसने उसे बपतिस्मा दिया था और बपतिस्मा के बाद जब मसीह प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की आत्मा कबूतर की तरह उस पर आकर ठहरी, जबकि स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मत्ती 3:17 में लिखा है। यह याद करते हुए कि यूहन्ना ने मसीहा के बारे में भविष्यवाणियों को कैसे दोहराया था, यीशु के बपतिस्मा के दृश्य को याद करते हुए पुजारियों और शासकों ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था। यदि उन्होंने यूहन्ना को एक भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार किया जैसा कि वे मानते थे तो वे उसकी गवाही को कैसे नकार सकते थे कि नासरत का यीशु परमेश्वर का पुत्र था? और वे यह नहीं कह सकते थे कि यूहन्ना का बपतिस्मा मनुष्यों का था, क्योंकि लोगों ने यूहन्ना को भविष्यवक्ता माना था। इसलिए उन्होंने कहा, हम नहीं बता सकते। फिर मसीह ने पिता और दो बेटों का दृष्टांत दिया। जब पिता पहले बेटे के पास गया और कहा, जाओ आज मेरे दाख की बारी में काम करो, बेटे ने तुरंत जवाब दिया, मैं नहीं करूंगा। उसने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और खुद को दुष्ट तरीकों और संगति के हवाले कर दिया। लेकिन बाद में उसने पश्चाताप किया और बुलावे का पालन किया। पिता दूसरे बेटे के पास भी यही आदेश देकर गया, आज मेरे दाख की बारी में काम करो। बेटे ने उत्तर दिया, मैं जाता हूँ श्रीमान, लेकिन वह नहीं गया। इस दृष्टांत में पिता परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है और दाग की बारी कलीसिया का। दो बेटों द्वारा दो वर्गों के लोग का प्रतिनिधित्व किया जाता है। बेटा जिसने आज्ञा का पालन करने से इनकार करते हुए कहा मैं नहीं करूंगा, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो खुले तौर पर अपराध में रह रहे थे, जिन्होंने धर्मनिष्ठता का कोई दावा नहीं किया, जिन्होंने खुले तौर पर संयम और आज्ञाकारिता के जुए के नीचे आने से इनकार कर दिया, जो परमेश्वर का कानून लागू करता है। लेकिन इनमें से कई ने बाद में पश्चाताप किया और परमेश्वर के आह्वान का पालन किया। जब यहूना बपतिस्मा देने हारा के संदेश में सुसमाचार उनके पास आया, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, उन्होंने पश्चाताप किया और अपने पापों को स्वीकार किया। मत्ती 3:2 में हम पाते हैं, जिस बेटे ने कहा मैं जाता हूँ श्रीमान और नहीं गया, उसमें फरीसियों का चरित्र प्रकट हुआ। इस बेटे की तरह यहूदी नेता भी पश्चातापहीन और आत्मसंतुष्ट थे। यहूदी राष्ट्र का धार्मिक जीवन एक दिखावा बन गया था। जब परमेश्वर की आवाज से सिनाई पर्वत पर कानून की घोषणा की गई तो सभी लोगों ने खुद को आज्ञा मानने का वचन दिया। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ श्रीमान, लेकिन वे नहीं गए। जब मसीह उनके सामने कानून के सिद्धांतों को रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए तो उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। मसीह ने अपने समय के यहूदी नेताओं को अपने अधिकार और दिव्य शक्ति के प्रचुर प्रमाण दिए थे, लेकिन हालांकि वे आश्वस्त थे, उन्होंने सबूत को स्वीकार नहीं किया। मसीह ने उन्हें दिखाया था कि वे अविश्वास करना जारी रखते हैं, क्योंकि उनके पास आज्ञाकारिता की ओर ले जाने वाली आत्मा नहीं थी। उन्होंने उन्हें घोषित किया था, तुमने अपनी परंपरा से परमेश्वर की आज्ञा को निष्फल कर दिया, वे व्यर्थ ही मेरी आराधना करते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं को सिद्धांतों के रूप में सिखाते हैं। मत्ती 15:6-9। मसीह के सामने सभा में शास्त्री और फरीसी, पुजारी और शासक थे, और दो बेटों का दृष्टांत देने के बाद मसीह ने अपने श्रोताओं से सवाल पूछा, उन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? खुद को भूलकर फरीसियों ने जवाब दिया, पहले ने। उन्होंने यह बात बिना यह समझे कही कि वे खुद के खिलाफ सजा सुना रहे थे। फिर मसीह के होठों से यह निंदा निकली, चुंगी लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यहूना तुम्हारे पास धर्म के मार्ग से आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया और तुमने यह देखकर बाद में पश्चाताप नहीं किया कि उस पर विश्वास कर सको। यहूना बपतिस्मा देने वाला सत्य का प्रचार करने आया और उसके प्रचार से पापियों को दोषी ठहराया गया और उनका मन परिवर्तन किया गया। ये लोग उन लोगों से पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे जो आत्मधार्मिकता में गंभीर चेतावनी का विरोध करते हैं। चुंगी लेने वाले और वेश्याएं अज्ञानी थे, लेकिन ये विद्वान लोग सत्य का मार्ग जानते थे। फिर भी उन्होंने उस मार्ग पर चलने से इनकार कर दिया जो परमेश्वर के स्वर्ग की ओर जाता है। सत्य जो उनके लिए जीवन का स्वाद होना चाहिए था वह मृत्यु का स्वाद बन गया। खुले पापी जो खुद से घृणा करते थे, उन्होंने यहूना के हाथों बपतिस्मा प्राप्त किया था, लेकिन ये शिक्षक पाखंडी थे। उनके अपने जिद्दी दिल ही सत्य को प्राप्त करने में बाधा थे। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के दृढ़ विश्वास का विरोध किया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से इनकार कर दिया। मसीह ने उनसे यह नहीं कहा कि तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने दिखाया कि जो बाधा उन्हें प्रवेश करने से रोक रही थी वह उनकी अपनी बनाई हुई थी। इन यहूदी नेताओं के लिए अभी भी द्वार खुला था, निमंत्रण था। मसीह उन्हें दोषी महसूस करते हुए और धर्मांतरित होते हुए देखना चाहता था। इसराइल के याजक और बुजुर्ग धार्मिक अनुष्ठानों में अपना जीवन बिताते थे, जिन्हें वे धर्म निरपेक्ष व्यवसाय से जोड़ने के लिए बहुत पवित्र मानते थे, इसलिए उनका जीवन पूरी तरह से धार्मिक होना चाहिए था, लेकिन वे अपने अनुष्ठान लोगों को दिखाने के लिए करते थे ताकि दुनिया उन्हें पवित्र और समर्पित समझे। आज्ञाकारिता का दावा करते हुए भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता करने से इनकार कर दिया। वे उस सत्य के अनुयायी नहीं थे जिसे वे सिखाने का दावा करते थे। मसीह ने यहूना बपतिस्मा देने हारा को सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक घोषित किया और उसने अपने श्रोताओं को दिखाया कि उनके पास पर्याप्त सबूत थे कि यहूना परमेश्वर का संदेश वाहक था। जंगल में उसके उपदेश के शब्द शक्ति से भरे थे। उसने अपने संदेश को दृढ़ता से आगे बढ़ाया, पुजारियों और शासकों के पापों की निंदा की और उन्हें स्वर्ग के राज्य के कार्यों का आदेश दिया। उसने उन्हें अपने पिता के अधिकार के प्रति उनके पापपूर्ण अवहेलना की ओर इशारा किया जो उन्हें नियुक्त किए गए कार्य को करने से मना कर रहा था। उसने पाप के साथ कोई समझौता नहीं किया और कई लोग अपने अधर्म से दूर हो गए। यदि यहूदी नेताओं का दावा सच्चा होता तो वे यहूना की गवाही स्वीकार कर लेते और यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने पश्चाताप और धार्मिकता के फल नहीं दिखाए। जिन लोगों को उन्होंने तुच्छ जाना वे ही उनसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे थे। दृष्टांत में बेटा जिसने कहा मैं जाता हूँ श्रीमान, खुद को वफादार और आज्ञाकारी के रूप में पेश करता है, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि उसका दावा वास्तविक नहीं था। उसे अपने पिता से सच्चा प्यार नहीं था, इसलिए फरीसी अपनी पवित्रता पर गर्व करते थे, लेकिन जब परीक्षण किया गया तो यह कमी पाई गई। जब ऐसा करना उनके हित में था जो उन्होंने कानून की आवश्यकताओं को बहुत सख्त बना दिया, लेकिन जब उनसे आज्ञाकारिता की मांग की गई तो उन्होंने चालाक कुतुर्कों से ईश्वर के उपदेशों की ताकत को कम कर दिया। उनके बारे में मसीह ने घोषणा की, क्या तुम ऐसा नहीं करते? क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं, मत्ती 23:3। उनके पास परमेश्वर या मनुष्य के लिए कोई सच्चा प्रेम नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें संसार को आशीष देने में अपने साथ सहकर्मी बनाने के लिए बुलाया, लेकिन जब वे अपने वादे पर खरे उतरते तो उन्होंने आज्ञाकारिता से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आप पर भरोसा किया और अपनी अच्छाई पर गर्व किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना की। उन्होंने वह काम करने से इनकार कर दिया जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा था और उनके अपराध के कारण प्रभु ने खुद को अवाज्ञाकारी राष्ट्र से अलग कर लिया। प्यारों, हम यहाँ देखते हैं ये लोग परमेश्वर के पीछे चलने का दावा तो करते थे, लेकिन वह मुंह से कहते थे, कार्य में नहीं करते थे। यीशु मसीह उनसे कहा, जो केवल हे प्रभु कहता है वे लोग स्वर्ग के राज में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, केवल वही जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ प्यारों, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, सच्चा मन से चलना है, उसके बातों को सुनना है और उसके कार्यों को करना है। परमेश्वर हमारी मदद करे। यदि हम अपने मनों को उसके पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें चलाएगा और हमें मदद करेगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। प्यारों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन संवादों से, इन वचनों से आशीष पा रहे होंगे, और यदि आप परमेश्वर का आशीष पा रहे होंगे और ये वचनों से आप प्रसन्न हैं तो आप हमें लिखकर अपना अनुभव व्यक्त कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबों को तू ग्रहण कर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, तूने हमें बुलाया है और तू चाहता है कि हम तेरे पीछे चले, तेरे कहे हुए बातों को माने। पिता परमेश्वर, हम सबों की तू मदद कर, तेरा पवित्र आत्मा का सहायता दे, हर एक श्रोताओं को तो आशीष दे पिता।
पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में एराही तू कभी भी अकेला नहीं।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446 पुणे 411037 महाराष्ट्र भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।